श्रोताओं नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी हमारे साथ आज का बाइबल अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से यशाया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और इसका मुख्य विषय है मसीह का आगमन और छुटकारा। प्रिय श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। लीजिए, प्रस्तुत है ये बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभुष्य के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने उन श्रोता मित्रों का जो हमारे इस कार्यक्रम को सुन करके अपने आशीषों को पत्र के माध्यम से, ईमेल के द्वारा से और SMS और फोन के द्वारा से हम तक पहुँचाते हैं। आप इसी प्रकार पत्राचार करते रहें ताकि हमें भी पता हो कि आपको इस वचन के द्वारा आशीष मिल रही है। तो आइए अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हम सबको अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए ताकि आज हम जो कुछ भी सुनते हैं समझ सकें, सीख सकें और अपने जीवन में उसे लागू करने पाएं। हर एक प्रकार की बुराइयों से, बुरी बातों से, बुरी संगति से आप हम सबको बचाएं। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो किसी प्रकार से निराश हैं, परेशान हैं, बीमार अवस्था में हैं या अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के, आर्थिक समस्याओं को लेकर के आप सबके साथ हो, उनके सहायक हो। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, हम सब इन दिनों यशाया नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और यशाया अपने भविष्यवाणी के द्वारा इसराइलियों को अपने संदेश जो परमेश्वर का है उन तक पहुंचा रहा है। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर के वचन के स्थान पर प्रेत सिद्धि के विरुद्ध भविष्यवाणी। तो आइए आप मेरे साथ निकाल लीजिए यशाया 8 अध्याय उसका 19 पद। यहाँ पर लिखा हुआ है, जब लोग तुमसे कहें ओझाओं और टोनहों के पास जाकर पूछो जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम यह कहना क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर ना पूछना चाहिए, क्या जीवतों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए। आज भी प्रेत सिद्धि का अभ्यास चल रहा है। 15 वर्ष पूर्व मैंने लिखा था परमेश्वर अपने लोगों को शैतानी कार्य में हाथ डालने से मना करता है। मेरे प्रियो, मनुष्य जब परमेश्वर से दूर हो जाता है तब वह प्रायः असामान्य और प्रेत सिद्धि की बातों में लग जाता है। लय व्यवस्था की पुस्तक 20 अध्याय उसके 27 और व्यवस्था विवरण 18 उसके 9 से 12 पद में भी हम इन सब बातों को पाते हैं। आज आत्माओं के संसार, तंत्र विद्या, शैतानी बातों में मनुष्य का झुकाव बढ़ता जा रहा है। कहीं कहीं शैतान की कलीसियाएं भी हैं, वे शैतान की उपासना करते हैं। विश्वासी भी भूत सिद्धि में विश्वास करने लगे हैं, वे दुष्ट आत्माओं को निकालने की बात करते हैं। मेरे मित्रों, मैं तो इसे धंधे में नहीं हूं, मैं परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार और उसके वचन का प्रचार करता हूं। इससे दुष्ट आत्माओं की समस्या दूर हो जाएगी। मैं तो कहूंगा कि हम तंत्र मंत्र से दूर रहें तो अच्छा है, क्योंकि यह खतरनाक क्षेत्र है। कुछ लोग इसे सच नहीं मानते हैं, परंतु यह है क्योंकि शैतान है। परमेश्वर हमें इसके विरुद्ध चेतावनी देता है, हमें इस चेतावनी पर ध्यान देना आवश्यक है। हम यशाया 8 अध्याय उसके 21 और 22 पद में पढ़ते हैं, वे इस देश में क्लेशित और भूखे फिरते रहेंगे, और जब वे भूखे होंगे तब वे क्रोध में आकर अपने राजा और अपने परमेश्वर को शाप देंगे और अपना मुख ऊपर आकाश की ओर उठाएंगे, तब वे पृथ्वी की ओर दृष्टि करेंगे, परंतु उन्हें सकेती और अंधियारा अर्थात संकट भरा अंधकार ही देख पड़ेगा, और वे घोर अंधकार में ढकेल दिए जाएंगे। मेरे प्रियो, इन अंतिम पदों में अवज्ञा का जीवन प्रकट है। जो भूत सिद्धि की ओर जाता है उसका परिणाम है सकेती, अंधियारा और निराशा। निराशा आपको वहां ले जाएगी, एक बार नहीं परंतु बार बार, और आप उसी में उलझे रहेंगे। यहां पर अध्याय 8 समाप्त होता है, और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 9 में देखेंगे, जिसका विषय है दाऊद के सिंहासन पर बच्चे का बैठना, उसके प्रथम आगमन में और द्वितीय आगमन के पूर्व अंधकार का समय। मेरे मित्रों, यह अध्याय विश्वासियों का एक परिचित अध्याय है, क्योंकि इसमें एक बालक प्रभु यीशु के आगमन की भविष्यवाणी है। हैंडल ने इस अध्याय को काम में लिया है, जिसके कारण कलीसिया इस अध्याय से परिचित है। मैं उसके गीत को सुनकर उत्साह से भर जाता हूँ। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। मेरे मित्रों, अध्याय 7 से 12 में आहाज के राज्य काल में की गई यशाया की भविष्यवाणियां हैं। यशाया के सेवा काल में आहाज एक बुरा राजा था। यशाया ने उज्जियाह के मरणोपरांत भविष्यवाणी की सेवा आरंभ की थी। उज्जियाह एक अच्छा राजा था जिसने 52 वर्ष यहूदा में राज्य किया था। उज्जियाह का पुत्र योताम भी एक अच्छा राजा था। योताम का पुत्र उज्जियाह का पोता आहाज एक बुरा राजा और ढोंगी मनुष्य था। उसी के राज्यकाल में यशाया ने मसीह के आगमन की भविष्यवाणी की थी। यह युग अंधकार का युग था। आइए हम देखेंगे इसराइल की आशा। पद 1-7 में हम देखते हैं कि इसराइल की आशा एक दिव्य बालक के पहले और दूसरे आगमन में ही है। तो आइए हम पढ़ें यशाया अध्याय 9 उसका 1 पद। लिखा है, तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबुलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की ओर यर्दन के पार की अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। इस पद का अनुवाद सर्वमान्य नहीं है, इसके विपरीत अर्थ भी प्रकट किए गए हैं। इससे श्रद्धालु मन को तो कोई समस्या नहीं है, परंतु दोनों अनुवादों की संभावना से ईश्वरीय उद्देश्य प्रकट होता है। अंतिम दिनों में ताल की ओर यर्दन के पार की अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा, अपमान किया और महिमा देगा, ये दो विपरीत बातें एक साथ समझना कठिनाई उत्पन्न करता है। परंतु मेरे विचार में यह किसी कारणवश ही ऐसा जटिल है। पहला अनुवाद तो आराम के आक्रमण की भविष्यवाणी है, और दूसरी संबंधित है अश्शूरों के आक्रमण से जो उन्हें बंदी बनाकर ले गए थे। इसे हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 15 अध्याय उसके 29 पद में पढ़ते हैं, गलील को महिमा देगा। यह प्रभु यीशु के प्रथम आगमन की भविष्यवाणी है। यीशु ने वास्तव में उस क्षेत्र को महिमा दी थी। गलील एक तुच्छ समझा जाने वाला क्षेत्र था, क्योंकि वहां अन्य जातियां वास करती थी। प्रभु यीशु उस युग में अभिमानी धर्मी नगर यरूशलेम से अलग चला गया था। न तो उसका जन्म वहां हुआ था और न ही वह वहां बड़ा हुआ था। नासरत उसका गांव था, और जब वहां उसका सम्मान नहीं हुआ तो वह कफरनहूम को चला गया। कफरनहूम राज्य के एक तुच्छ सीमांत क्षेत्र था जो गलील सागर के क्षेत्र में था। जबुलून और नप्ताली वहां थे। नप्ताली गलील सागर के पश्चिम में था और उससे जुड़ा जबलून था। नासरत जबलून में था और कफरनहूम यीशु का मुख्यालय नप्ताली में था। मेरे मित्रों, यही कारण था कि उसने कफरनहूम को ऐसा श्राप क्यों दिया था, क्योंकि उसे ऐसी ज्योति प्राप्त थी जो अन्य नगरों में नहीं थी। मत्तीरचि सुसमाचार 4 अध्याय उसके 12 से 16 पद में लिखा है, जब उसने यह सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है तो वह गलील को चला गया और वह नासरत को छोड़कर कफरनहूम में, जो झील के किनारे जबलून और नप्ताली के देश में है, जाकर रहने लगा, ताकि जो यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। जबलून और नप्ताली के देश झील के मार्ग से यर्दन के पार अन्य जातियों का गलील, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। मेरे मित्रों, आप देखेंगे कि मत्ती ने संदिग्ध उक्ति को छोड़ दिया है। मेरे विचार में यह दो मुखी अर्थ पवित्र आत्मा की इच्छा से ही था और दोनों ही सच हैं। यशाया 9 अध्याय के 2 पद में लिखा है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पद 1 का अनुवाद कैसा भी हो, यह सच है कि तुच्छ समझे जाने वाले गलील के निवासी अन्य जाति आस्थाओं और धार्मिक परंपराओं के अंधकार से घिरे हुए थे। वह एक स्थान था जहां पुराना नियम और अन्य जाति धर्म बाहरी रूप से परस्पर एक थे। उस क्षेत्र में प्रभु यीशु की सेवा के द्वारा लोगों ने ज्योति का अनुभव पाया। उन्होंने जगत की ज्योति प्रभु यीशु मसीह को देखा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 12 पद में लिखा है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जी हाँ, यह प्रभु यीशु के आगमन पर पूरी हो गई थी। मेरे विचार में यदि हम कहें कि पहले 2 पद प्रभु यीशु के प्रथम आगमन के संबंध में हैं, तो उचित ही होगा। अब आगे के पद किस युग की चर्चा करते हैं? विशिष्ट बाइबल टीकाकारों का मानना है कि पद 2 और पद 3 के मध्य समय का अंतर है। पहले 2 पद प्रभु यीशु के प्रथम आगमन के संबंध में हैं, तो पद 3 उसके फिर से आने के संबंध में है। यशाया 9 अध्याय के 3 पद में हम पढ़ते हैं, तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया, वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं और ऐसे मगन है जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं। मेरे प्रियो, राष्ट्र में विकास हुआ था और नागरिकों में अधिक धार्मिकता थी, परंतु आनंद समाप्त हो गया था। वहां धर्म के काम तो थे परंतु मसीह नहीं था। वह दिखावे का समय था परंतु उसमें आनंद नहीं था। जैसा कि आज बहुत सारे लोग आनंद तो दिखाते हैं, दिखावा करते हैं, परंतु आनंद नहीं होता है। पद 2 के बाद आज तक 2000 वर्ष हो गए हैं। यशाया ने इस समय के लिए कोई भविष्यवाणी नहीं दी है। क्यों? क्योंकि इस समय परमेश्वर कलीसिया को बुला रहा था। यशाया के लिए कलीसिया एक भेद की बात थी। रोमियो की पत्री 16 अध्याय उसके 25 और 26 पद में पौलुस कहता है, अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। मेरे प्रियो, पौलुस स्पष्ट करता है कि भविष्यद्वक्ता जिसे देख नहीं पाए थे वह उनसे चूक गई। इस अध्याय में यशाया ऐसा ही करता है। यशाया की पुस्तक 63 अध्याय में हम देखेंगे कि एक स्थान पर यशाया कोमा लगाकर 2010 वर्ष का अंतराल कर देता है। यशाया के युग में कलीसिया के विषय कोई नहीं जानता था, परंतु आज कलीसिया प्रगट प्रमाण है और वह समय का अंतराल भर दिया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि इस अध्याय के शेष पद इसराइल के विषय में हैं और वह जाति जो बढ़ाई गई वह आहाज की प्रजा थी। ध्यान दीजिए कि पौलुस कहता है, सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। अतः आप देख सकते हैं कि कलीसिया का प्रकाश एक अलग समूह के लिए था। यशाया केवल एक देश की चर्चा कर रहा था और उसका अपना देश इसराइल था। यशाया 9 अध्याय उसके 4 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुए और उसके बहंगे के बांस, उस पर अंधेर करने वाले की लाठी, इन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिद्यानों के दिन में किया गया था। यह कब तोड़ा जाएगा? मसीह यीशु के दूसरे आगमन पर। आज इसराइल शांति का आनंद नहीं ले पा रहा है, क्यों? उनके कष्टों का कारण है कि उन्होंने शांति के राजकुमार अपने मसीह प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं किया था। अत्याचारी की लाठी प्रभु यीशु के आने तक नहीं तोड़ी जाएगी। यशाया 9 अध्याय उसके 5 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग का कौर हो जाएंगे। म्यूनिक के ओलंपिक खेलों में उग्रवादियों ने यहूदी खिलाड़ियों की हत्या कर दी थी, जिसके कारण उनके संबंधी ही नहीं संपूर्ण इसराइल ने विलाप किया था। इसका कारण क्या था? उन्होंने शांति लाने वाले मसीह को स्वीकार नहीं किया था। वह शांति का राजकुमार है, एकमात्र वही है जो कष्ट और अत्याचार सहने वालों को शांति दिला सकता है। इन पदों के साथ पद 3 का विचार समाप्त होता है। वे भविष्य में महाक्लेश को भी संबोधित करते हैं। मेरे मित्रों, इस अध्ययन में हम मसीह के आगमन की भविष्यवाणी को देखेंगे। यशाया 9 उसके 6 और 7 पद में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। मेरे प्रियो, यह कैसे होगा? सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। क्या यह प्रभु यीशु के प्रथम आगमन के विषय भविष्यवाणी है? अधिकांश विश्वासी इसे यीशु के आगमन की भविष्यवाणी मानकर बड़े दिन पर पढ़ते हैं, परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि यह प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन की भविष्यवाणी है, जब वह इसराइल राष्ट्र में कदम रखेगा। यह भविष्यवाणी प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन की है, जैसे यशाया 53 में लिखा है कि प्रभु यीशु के प्रथम आगमन की भविष्यवाणी है। ये पद 3 के विचार पर ही आधारित हैं और मसीह यीशु के द्वितीय आगमन की ओर संकेत है। अब प्रश्न यह है कि उसके दूसरे आगमन पर बालक उत्पन्न कैसे होगा? पहले तो मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि जब वह पहली बार आया था तब वह इसराइल राष्ट्र के लिए उत्पन्न नहीं हुआ था। उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया था। यूहन्ना कहता है 1 अध्याय के 11 पद में कि वह अपनों में आया और अपनों ने ही उसे ग्रहण नहीं किया। निसंदेह उसका जन्म बैतलहम में हुआ था, परंतु इसराइल ने उसे अपनाया नहीं था। केवल कुछ चरवाहे थे जिन्होंने उसका स्वागत किया था। ज्योतिषी जो उसको भेंट चढ़ाने के लिए आए थे वे अन्य जाति थे। यदि आप पद 6 को ध्यान से पढ़ें तो स्पष्ट होगा कि यह भविष्यवाणी उसके प्रथम आगमन पर पूरी नहीं हुई थी और न ही पद 3, 5 और 7 पूरी हुई है। मेरे प्रियो, यह कहना कि मसीह इसराइल के लिए उत्पन्न होगा अधिक उचित है। और सच तो यह है कि इसराइल अकस्मात ही एक राष्ट्र के रूप में उत्पन्न होगा, जो यशाया के अंतिम अध्याय से स्पष्ट है। यशाया 66 उसके 7 और 8 पद में लिखा है कि उसकी प्रसव पीड़ा उठने से पहले ही उसने जन्मा दिया, उसको पीड़ाएं होने से पहले ही उसने बेटा जन्मा। ऐसी बात किसने कभी सुनी? किसने कभी ऐसी बातें देखी? क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? क्या एक जाति क्षण मात्र में ही उत्पन्न हो सकती है? क्योंकि सियोन को प्रसव पीड़ा उठी ही थी कि उससे संतान उत्पन्न हो गया। मेरे प्रियो, इसराइल एक मानव पुत्र से उत्पन्न होगा, उसके जन्म लेने से नहीं। इसराइल के जन्म लेने से मसीह के द्वितीय आगमन पर यह इसराइल का नया जन्म होगा। बालक उत्पन्न हुआ पर ध्यान देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे कहने का अर्थ है कि उसके मनुष्यत्व पर पुत्र दिया गया, उसके द्वितीय आगमन पर यह सिद्ध होगा। दूसरे शब्दों में 2010 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु ही वह है जो यहां पर आया। प्रभुता उसके कंधे पर होगी। कंधा शक्ति का प्रतीक है। इस संसार की प्रभुता उसके बलवंत कंधों पर टिकेगी। यह उसके प्रथम आगमन पर नहीं हुआ था। हमारे प्रभु यीशु को दिए गए नामों पर ध्यान दीजिए। अद्भुत, यह विशेषण शब्द नहीं संज्ञा है। यह उसका नाम है। न्यायों की पुस्तक 13 अध्याय के 18 पद में हम देह धारण से पूर्व के प्रभु यीशु को देखते हैं जो परमेश्वर की सेना का प्रधान है। यहोवा के दूत ने उससे कहा, मेरा नाम तो अद्भुत है। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 27 पद में प्रभु यीशु ने कहा, कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता। मनुष्य नहीं जानते थे और न ही आज जानते हैं कि वह अद्भुत है। उसमें विश्वास करने वाले भी नहीं जानते कि वह कैसा अद्भुत है। मेरे मित्रों, जब वह फिर आएगा तब वह विद्रोह का दमन करेगा और पृथ्वी पर राज्य करेगा और उसका नाम अद्भुत है। युक्ति करने वाला, उसने मनुष्य से सम्मति कभी नहीं मांगी थी। रोमियो की पत्री 11 अध्याय उसके 34 पद में पौलुस कहता है, प्रभु की बुद्धि को किसने जाना है या उसका मंत्री कौन हुआ है? परमेश्वर का सलाहकार कोई नहीं है। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को एकत्र करके कभी नहीं कहा, साथियों मुझे सुझाव दो कि क्या करना है। आप धर्मशास्त्र में ऐसा कहीं नहीं पढ़ेंगे। उसने सदैव उन्हें बुलाकर कहा, मैं यह करूंगा क्योंकि यह मेरे पिता की इच्छा है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय के 30 पद में पौलुस कहता है, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। हम बुद्धिमान नहीं हैं, हमें उसके पास सहायता के लिए जाना चाहिए। पराक्रमी परमेश्वर, इब्रानी भाषा के इस शब्द का अर्थ है जिसके पास सारी शक्तियां हैं। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मरियम की गोद में लेटा वह बालक जगत को थामे हुए था। उसने स्वयं कहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का संपूर्ण अधिकार उसे दिया गया है। वह सर्वशक्तिमान पराक्रमी परमेश्वर है। तब हम अगला नाम देखते हैं, अनंत काल का पिता। इसका अर्थ है कि वह सब वस्तुओं का, समय का, युगों का और सब वस्तुओं की दुरस्त उद्देश्यों का सृजनहार है। यूहन्ना कहता है 1 अध्याय उसके 3 पद में, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय के 16 पद में पौलुस लिखता है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। इसके साथ ही इब्रानियों के पत्र 1 अध्याय उसके 1 और 2 पद में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने इन अंतिम दिनों में पुत्र के द्वारा बातें की जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। यहां सृष्टि के स्थान पर युगों का होना चाहिए क्योंकि मूल यूनानी शब्द का अर्थ यही है। उसे अनंत काल का पिता कहने में निहितार्थ सही है। शांति का राजकुमार। उसके राज्य के बिना पृथ्वी पर शांति स्थापित नहीं हो सकती है। उसकी सरकार में उन्नति और विकास होगा। यीशु के राज्य के दो दिन एक जैसे नहीं होंगे। वह दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा, यथार्थ में बैठेगा, सच में बैठेगा। उसके शासन में न्याय होगा। इसके पूरा पूरा होने के लिए मनुष्य की योजनाएं नहीं, परमेश्वर की धुन सक्रिय होगी। मेरे मित्रों, इसराइल की सहायता को हम देखते हैं। पद 8 से पद 21 तक का शेष भाग यशाया के युग की स्थानीय परिस्थितियों से संबंधित है और निकट भविष्य में पूरी भी हो गई थी, परंतु वह दूरस्थ भविष्य का संकेत भी करती है जो महाक्लेश में पूरी होंगी। परमेश्वर इसराइल को दंड देगा और उन सब राष्ट्रों को भी दंड देगा जिन्होंने उससे मुंह मोड़ लिया है। तब प्रभु यीशु फिर आएगा। आज का मनुष्य यह सुनना नहीं चाहता है। वे शांतिदायक बात सुनना चाहते हैं। आप इतिहास में अवश्य देखें कि जिन राष्ट्रों में परमेश्वर का त्याग किया उनका क्या हुआ। उन सब की अति दुखमय और दारुण कहानी रही है। यदि हम बच जाएंगे तो इतिहास में हमारा देश ही होगा जो बच जाएगा। मेरे मित्रों, आज मुझे और आपको इस बात को समझने की आवश्यकता है ताकि हम परमेश्वर के निकटता में आ सकें। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने तू क्यों करता मुझसे इतना। करता मुझसे।